ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक बार एक केले की रेड़ी पे केले वाला केले बेच रहा था, तो किसी ने पूछा केलों का भाव क्या है। तो कुछ केले उसकी रेड़ी के ऊपर बिखरे हुए पड़े थे। उसने कहा ये 4 रुपए का एक केला है, और उससे भी छोटे साइज के केले गुच्छों में ऊपर लगे हुए थे। उसने पूछा कि इनका भाव क्या है। उसने कहा ये 60 रुपए दर्जन है। तो खरीदने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो बड़ा केला है वो तो 4 रुपए का एक है, और जो छोटा केला है वो 12 रुपए और 60 रुपए दर्जन है, मतलब 5 रुपए का एक है, तो ऐसा क्यों है। तो मालूम है उस रेडी वाले ने क्या उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया होगा, ऐसा क्यों है। क्योंकि जो गुच्छे में लगा हुआ है वो शक्तिशाली है, वो ज्यादा कीमती है, और जो गुच्छे से अलग होके बिखर करके नीचे गिरे हुए हैं उनकी कीमत तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो हम सब बाबा के बच्चे भी जब तक इस ब्राह्मण परिवार के गुच्छे में है तब तक हमारी कीमत कितनी है। बहुत अमूल्य रत्न है, बाबा की नजरों में है, बाबा के सामने है, बाबा के दिल में है। और अगर कोई भी इस गुच्छे से अलग हो जाता है तो क्या होता है, उसकी भी कीमत कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो बने रहेंगे, और अगर बिखर जाएंगे तो हमारा पतन निश्चित है। महात्मा बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले 3 शिक्षाएं दी थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा कहा था संघम शरणम गच्छामि, और तीसरा कहा था बुद्धिम शरणम गच्छामि। तो इसमें भी जो संघम शरणम गच्छामि है ये वास्तव में संगठन की शक्ति का महत्व दिखाता है। बुद्धिस्ट में भी दिखाते हैं कि जब तक उनके विहार थे और उन विहारों में बौद्ध भिक्षु संगठित होकर रहते थे तब तक ये धर्म बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे इनके विहारों में आपस में फूट हुई, बौद्ध सन्यासियों में एकता नहीं रही, तो बाद में विहार भी नष्ट हो गए, और देखने में आता है कि भारत से बौद्ध धर्म लगभग प्राय लोप ही हो गया। प्रकृति में भी आज हम इस बात की चिंता करते हैं कि बहुत सारे जीव विलुप्त हो रही हैं। उनमें से एक तो हंस है, हंस कहीं देखने में ही नहीं आता है, और दूसरे जो शेर हैं वो भी बहुत कम 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 होते जा रही हैं। लोग अफ्रीका के जंगलों में शेर देखने जाते हैं, घूमते रहते हैं, किसी को दोपहर तक किसी को शाम तक शेर दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो वैसे ही वापस लौट आते हैं। तो सवाल ये है कि हंस और शेर विलुप्त क्यों हो गए। इसके अन्य कई कारण तो हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि ना तो शेर संगठन में रहते हैं और ना हंस संगठन में रहते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है कि लालन की नहीं बोरियां और हंसाना चले पराती, सिंघन के लहड़ा नहीं और साधुना बसे जमाती। अर्थ ये है कि जैसे कबूतरों की कौओं की पंगतियां होती हैं, ऐसी कभी हंसों की पंक्तियां नहीं होती हैं। हंस तो मानसरोवर के किनारे एक या दो ऐसे रहते और ऐसे ही शेरों के कभी झुंड नहीं होते। झुंड हिरणों के होते हैं, हाथियों के होते हैं, गीदड़ों के होते हैं। तो जो प्राणी समूह में रहता है वो अपने अस्तित्व को बचा पाता है, लेकिन जो प्राणी अकेला रहता है उस प्राणी के बचने की उम्मीद कम रहती है। तो यही कारण है कि ये दोनों प्राय लोप हो गए। अगर हम इतिहास उठा करके देखें तो इतिहास भी हमें यही शिक्षा देता है कि जो जाति इकट्ठी रहती है वो बची रहती है, लेकिन जिसमें एकता का अभाव है वो पराधीन हो जाती है। आज से लगभग 826 साल पहले अर्थात 1191 और 1192 में त्रावड़ी के दो युद्ध हुए। इन युद्धों में एक तरफ था अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान, जिसका राज्य दिल्ली से लेकर अजमेर तक और भारत के और भी कई हिस्सों में था। तो ये बहुत बहादुर राजा था और बहुत वीरता से लड़ा, लेकिन आपसी फूट ने, जयचंद के साथ इसकी फूट ने इसको हरा दिया, इसको बंदी बना लिया गया। और जयचंद के साथ इसकी फूट भी इसलिए पड़ी, जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता उसके साथ इसका लगाव था। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे ये जो लगाव है, अनुराग है, आकर्षण है, ये भी आत्मा को कमजोर कर देता है। उसके बाद जयचंद का भी वध हुआ, पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और भारत अगले 600 साल के लिए मुसलमान बादशाहों के अधीन हो गया। उसके बाद जब उनके अधीन हो गया तो भारत का सांस्कृतिक पतन भी हुआ, आर्थिक पतन भी हुआ। पर जब मुस्लिम बादशाहों में आपस में फूट पड़ी, मुस्लिम घरानों में आपस में फूट पड़ी, उसके बाद भारत का राज्य अंग्रेजों के हाथ में आया और अंग्रेजों की तो पॉलिसी ही थी फूट डालो और राज्य करो। तो वो लोग क्या करते थे, उस समय भारत में लगभग 500 रियासतें थी, तो वो एक राजा को बहुत लिफ्ट देते थे, एक राजा को बहुत अपना बना लेते थे और दूसरे राजा की उसके आगे ग्लानी करते थे। तो इस प्रकार से भारत के एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा देते थे और इस तरह से फूट डाल डाल के उन लोगों ने भारत की बहुत संपत्ति हड़पी, भारत के लोगों के बहुत अधिकार छीने, भारत के लोगों पे बहुत अत्याचार भी किए। लेकिन बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कुछ लोग संगठित हुए और फिर ये आधी अधूरी आजादी मिली। लेकिन आजादी के बाद हम देख रही हैं कि इस देश में अलगाव निरंतर बढ़ रहा है, कई भाषा के नाम पे, कई आरक्षण के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, पद वर्ग, इनके कारण कहीं भी फूट की आग सुलग जाती है और जो सुलगाने वाले हैं वो भी उसमें बेचारे झुलसते रहते हैं। तो इसलिए वर्तमान समय प्यारे बाबा ने हम बच्चों को एक प्यारा सा संगठन दिया है और इस संगठन में हम जितना मैंपन का त्याग करके संगठन को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं उतनी बाबा की प्रत्यक्षता सरल होती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था संगठन को तोड़ने वाला सबसे बड़ा कारण है मैंपन। बाबा ने उदाहरण दिया कि ब्रह्मा बाबा ने कभी मैंपन नहीं रखा और जगदम्बा को सदा आगे किया, तो इसके कारण बाबा पीछे नहीं हो गई, मम्मा को आगे करके बाबा और भी आगे हो गई। तो बाबा ने कहा अगर संगठन की शक्ति जमा करनी है तो एक महामंत्र याद रखो, पहले आप। और ये पहले आप भी केवल कहने मात्र नहीं, केवल दिखावा मात्र नहीं, लेकिन दिल की सच्ची शुभ भावना से पहले आप। क्योंकि सेवा चाहे कोई भी करे लेकिन सेवा तो बाबा की है ना, मैंने की तो भी बाबा की सेवा हुई और दूसरे ने की तो भी बाबा की सेवा हुई। بابا نے کہا یہاں کسی کا پرسنل دھندا تو ہے نہیں کہ اس نے کر لیا تو وہ آگے بڑھ جائے گا, ساری سیوائیں ایک کو سمرپت ہوتی ہیں. تو بابا نے کہا یہ بھاؤ من میں کیوں آئی کہ یہ سیوا میں ہی کر سکتا ہوں, میں ہی کروں گا, کسی اور نے اس کو ہاتھ کیوں لگایا. سیوا ہونی چاہیے, میں کروں تو بھی ہو جائے گی, دوسرا کرے تو بھی ہو جائے گی. تو بابا نے کہا میں پن کا تیاگ ہی یونٹی کا آدھار ہے, وہ بھی سچی بھاونا سے, شبھ بھاونا سے. کیول میں آگے بڑھوں یہ بھاونا نہیں, لیکن سب آگے بڑھیں, کیونکہ بابا کا کاریہ تو تبھی سفل ہوگا جب سب آگے بڑھیں گے. اگر ایک بھی پیچھے رہ گیا تو بابا کا کاریہ سمپن نہیں ہوگا. کہتے ہیں ایک بار ایک گرو کے دو چیلے تھے, ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا. ایک چیلے نے کہا میں بڑا ہوں کیونکہ میں بہت سمے سے اس آشرم میں رہ رہا ہوں, اور دوسرے چیلے نے کہا میں بڑا ہوں کیونکہ میری سادھنا اونچی ہے, مجھے شلوک زیادہ یاد آتے ہیں, میں پروچن زیادہ کرتا ہوں, اور میں گرو کا آگیاکاری اور وفادار زیادہ ہوں, اس لیے میں بڑا ہوں. تو میں بڑا کی بحث لے کے جب وہ گرو جی کے پاس گئے اور گرو جی کو کہا کہ ہمارا فیصلہ کرو بڑا کون, تو گرو جی نے ایک سیکنڈ میں ہی فیصلہ کر دیا. گرو جی نے کہا بڑا وہی ہوتا ہے جو دوسرے کو بڑا مانے. تو جو دوسرے کو بڑا مانے گا وہ بڑا بن جائے گا, اور جو دوسرے کو چھوٹا مانے گا وہ چھوٹا بن جائے گا. ہم دوسرے کو بڑا کر کے خود بڑے ہو جاتے ہیں, اور دوسرے کو چھوٹا کر کے خود چھوٹے ہو جاتے ہیں. ارتھات جو چیز ہم دیتے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں, لیکن واسطو میں وہ لوٹ کے ہمارے پاس ہی آ جاتی ہے. سمان دیں گے تو لوٹ کے سمان آئے گا, اور اپمان دیں گے تو لوٹ کر کے اپمان آئے گا. تو بڑا بننے کا آدھار ہے میرے آس پاس, میرے ساتھ جو بھی لوگ ہیں وہ میرے سے بڑے ہیں تو میں اپنے آپ ہی بڑا ہو جاؤں گا. ہم اپنے چاروں اور چھوٹے چھوٹے جیووں کو دیکھتے ہیں. آپ نے ایک چھوٹا سا جیو دیکھا ہوگا, دیمک. دیمک بہت چھوٹی ہے, چینٹی سے بھی چھوٹی ہوتی ہے, اور مٹی جیسا اس کا رنگ ہوتا ہے. لیکن پیڑ کا بہت بڑا ٹھونٹ ہو اس کو بھی وہ اندر ہی اندر مٹی کے اونچے گھر میں بدل دیتی ہے, ارتھات لکڑی کو مٹی میں بدل دیتی ہے. کتنی طاقت ہے اس چھوٹے سے جیو میں, لیکن وہ سنگٹھت ہوتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں, چھوٹی سی جگہ میں اتنے اکٹھے اکٹھے رہتے ہیں اور اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں. ایسے ہی چینٹی کو آپ دیکھیے, چینٹی کی طاقت کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ جب دو چینٹیاں آمنے سامنے سے آ رہی ہوتی ہیں تو آپ دیکھنا اپنا سر ایک دوسرے سے ملائیں گے ضرور ایک بار, اور ایک بار ملانے کے بعد پھر وہ سپریٹ ہو جاتی ہیں. اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ اپنے سے کئی گنا بڑی چیز کو گھسیٹتی ہیں تو جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہیں لگ جاتی ہے, یہ نہیں دیکھتی کہ میں سر کی طرف لگوں, کہ میں پاؤں کی طرف لگوں, کہ میں اس کی بازو میں نہیں کھڑی ہوں گی, کہ اس کی بازو میں نہیں کھڑی ہوں گی. جہاں جگہ ملے وہیں لگ کر کے اپنا زور لگا لیتی ہیں, اور اتنے بڑے جیو کو گھسیٹ کر کے لے جاتی ہیں. کئی دنوں کا آہار اپنے آسرے میں اکٹھا کر لیتی ہیں, اور نیچے ہی نیچے زمین کو کھوکھلا بھی کر لیتی ہیں. تو یہ چیٹیوں کی یونٹی, ان کی نمرتا, ان کی اتھک پن, نرنتر کام کرتی ہیں, وہ کبھی بھی تھکتی نہیں ہے, صبح سے شام تک کبھی ریسٹ نہیں ہوتا ہے ان کا. تو اتھک ویکتی کب بنتا ہے؟ جب آپس میں پیار ہو اور شبھ بھاونا ہو. نہیں تو اگر کسی کے ساتھ پیار نہیں, شبھ بھاونا نہیں, کسی کی کوئی بات چبھ گئی تو ویکتی بہت جلدی تھک جاتا ہے. واسطو میں شریر نہیں تھکتا, من تھکتا ہے. تو چیٹیوں کا من اتھک کیوں ہے؟ کیونکہ سب کے لیے شبھ بھاو ہے, میں پن میرا پن ہے ہی نہیں. اور اسی طرح سے گائے کو دکھاتے ہیں, گائے بہت کمزور پرانی ہے شیر کے سامنے, لیکن اگر کبھی شیر گایوں کے جھنڈ پہ آکرمن کر دے تو ساری گائے اکٹھی ہو کر کے نا شیر کو بھی زخمی بنا دیتی ہیں, شیر کو بھی بھگا دیتی ہیں. اس لیے سندھی بھاشا میں ایک کہاوت ہے, बत 12, इसका अर्थ है एक और दो मिलकर के 12 हो जाती हैं। और हिंदी में एक कहावत है एक और एक 11, इसका अर्थ ये है कि एक और एक मिले तो उनकी शक्ति 11 गुनी बढ़ जाती है। और वर्तमान समय तो बिंदु रूप शिव बाबा हमारे साथ हैं, एक और एक के बीच में अगर शिव बाबा आ जाए तो उनकी शक्ति 101 गुनी हो जाती है, एक और दो के बीच में अगर शिव बाबा आ जाए तो उनकी शक्ति 102 गुनी हो जाती है। मानव का शरीर देखिए, ये शरीर भी यूनिटी के कारण कितने वर्षों तक ठीक से चल पाता है। सबसे पहले हाथ मेहनत करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, या कोई कलम से काम करता है, कोई कोई किसी और तरीके से सेवा करता है, तो हाथों से अधिकतर काम होते हैं। हाथों से काम हुए लेकिन जो भोजन आया वो हाथों को तो मिला ही नहीं, किसने खाया? मुख ने खाया, लेकिन मुख ने सिर्फ चबाया, खाया नहीं। और चबाने के बाद, पीसने के बाद आगे भेज दिया। और कितनी ऑनेस्टी है मुख के चबाने में, सारा का सारा अंदर भेज दिया। लेकिन मान लीजिए एक छोटा सा कण दांत में कहीं चिपका रह गया तो वो भी सिस्टम को बिगाड़ देगा, इसलिए उसको भी टूथ पिन लेकर के या तो बाहर फेंक देता है या अंदर ले जाता है, लेकिन एक कण भी अपने पास नहीं रखता। ऑनेस्टी हो तो ऐसी, ऐसे नहीं मैंने 99% तो दे दिया, एक रख लिया तो क्या हो गया, वो एक भी व्यवस्था में कहीं ना कहीं गड़बड़ पैदा कर देगा। 100 माना 100, तो मुख की ऑनेस्टी देखिए 100% खाली हो जाता है पीसने के बाद। और उसके बाद पेट क्या करता है, पेट में उसको और बारीक पीसा जाता है, लेकिन उसके बाद पेट भी अपने पास कुछ नहीं रखता, उसका जो सूक्ष्म हिस्सा है उसको पूरे शरीर में प्रवाहित कर देता है, और उसी में से कुछ ताकत हाथों को भी मिल जाती है। तो हाथों को कितना मिला, मेहनत तो बहुत की इन्होंने, कमाया तो सारा दिन, लेकिन जितनी जरूरत थी उतना मिला। तो इस शरीर में जो वितरण का सिस्टम है वो बहुत एक्यूरेट है, जिसको जितनी आवश्यकता उतनी चीज मिल जाती है। अगर ये वितरण निष्पक्ष ना हो, अगर ये वितरण सही तरीके से ना हो, अगर इस वितरण में कहीं बहुत अधिकता और कहीं बहुत कमी हो, तो इस शरीर में भी अनेक डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं। और जिन लोगों की काया लंबी नहीं चलती उसका कारण यही है, जैसे आजकल दिखाते हैं कि बॉडी में कैंसर पैदा हो जाता है, तो इस बॉडी में बिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं, उनमें ये नेचर है, सेल्स की ये नेचर है कि वो अपने लिए कम जीती हैं लेकिन शरीर के लिए अधिक जीती हैं। अपना जो भी कुछ बनाती हैं वो पूरा का पूरा इस बॉडी को समर्पित कर देती है। लेकिन कैंसर सेल्स कौन सी होती है, वो सेल्स होती हैं जो जितनी भी ऑक्सीजन है उसको संग्रहित कर लेती हैं, जितनी भी शरीर में वसा है या विटामिन है उनको भी संग्रहित कर लेती हैं, संग्रहित करके उसको केवल केवल अपने लिए यूज करने लगती हैं, और बाकी शरीर में शक्ति कम जाती है। तो उन सेल्स को कहते हैं कैंसर सेल्स, और उसके कारण पूरे बॉडी को नुकसान होता है। फिर बाद में कीमो के माध्यम से उन सेल्स को डेड किया जाता है जो संग्रह कर रही है, और फिर बॉडी ठीक होती है। तो अगर इस समाज में या परिवार में या किसी भी संगठन में कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति बहुत संग्रह करने लग जाते हैं, मैं करने लगते हैं, मेरा करने लगते हैं, बाकियों के हिस्से को लेने लगते हैं, तो फिर संगठन टूट जाता है। तो एकता का आधार है सही वितरण, निष्पक्ष वितरण। देखने में आता है कि जब व्यक्ति संगठन में है तो कोई कम योग्य व्यक्ति भी होता है ना, तो भी उसकी योग्यता दूसरों के साथ मिलकर के बढ़ जाती है। और जब व्यक्ति संगठन में होता है तो उसका अहम गल जाता है, अकेले व्यक्ति को ईगो ज्यादा आता है। और तीसरी बात ये होती है कि संगठन में जब व्यक्ति होता है तो उसकी योग्यता बरकरार रहती है। जैसे अंगीठी में आपने देखा होगा बहुत सारे कोयले होते हैं, सारे कोयले लाल लाल होते हैं, कितना सुंदर रंग होता है कोयलों का, रंग भी सुंदर होता है, उनमें हीट भी बहुत तेज होती है। लेकिन मान लीजिए हमने एक कोयले को अंगीठी से बाहर निकाल दिया, नीचे रख दिया, फर्श पे रख दिया, तो क्या होगा? दो बातें होंगी, एक तो उसकी लालिमा खत्म हो गई, काला हो गया, रूप ही बिगड़ गया, दूसरा उसकी हीट भी खत्म हो गई, उसका जो गुण था उसको भी घुण लग गया, और तीसरी बात ये होगी कि उसके ऊपर राख का आवरण आ जाएगा और थोड़ी देर में वो केवल राख के ढेर में बदल जाएगा। तो व्यक्ति की भी योग्यताएं तब बरकरार रहती हैं, तब शाइनिंग रहती हैं, तब परमानेंट रहती हैं जब वो संगठन के बीच में है। अगर वो संगठन से निकल करके अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन करे तो वो टिकी नहीं रहेंगी। और डाली पे लगे पत्ते को आप देख लीजिए, डाली के अनेक पत्तों के बीच में पत्ता मस्ती से झूल रहा है, उसने सोचा नहीं मैं तो अकेला रहूंगा, और डाली से टूट के नीचे गिर गया। अब नीचे गिरते ही क्या हुआ, उसका खाद्य पानी सब बंद हो गया, थोड़ी देर में वो मुरझाएगा, उसके बाद सूखेगा और उसके बाद हवा के साथ उड़ के पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा, बीज के साथ उसका कनेक्शन ही टूट गया। तो ये ब्राह्मण परिवार कल्प वृक्ष का बीज है शिव बाबा और हम सब इसके पत्ते हैं। तो जब हम इस कल्प वृक्ष से जुड़े रहते हैं तो बीज की शक्ति हमें मिलती रहती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस संगठन रूपी किले के साथ मजबूती से जुड़े रहो, ये ब्राह्मणों का किला है। जब किसी व्यक्ति में स्वार्थ आता है तो वो क्या सोचता है कि किले के जिस हिस्से में मैं रह रहा हूं ना बस वो मजबूत बन जाए, और दूसरे हिस्से में मजबूती आए या ना आए मेरा क्या जाता है। लेकिन एक नियम है कि एक हिस्से की कमजोरी सारे किले की कमजोरी बन जाती है, लेकिन एक हिस्से की मजबूती सारे किले की मजबूती नहीं बनती है। इसलिए केवल मेरा हिस्सा मजबूत हो जाए तो उससे मैं भी सुरक्षित नहीं रहूंगा, अगर दूसरी तरफ से किला कमजोर है तो वो कमजोरी मेरी वाली मजबूती को भी कमजोर कर देगी। इसलिए केवल मेरी सुरक्षा नहीं, केवल मेरी मजबूती नहीं, लेकिन पूरे किले की मजबूती। एक बहुत सुंदर कहानी आप सबने सुनी होगी, एक बार जंगल में बहुत सारे बटेर दाना चुगते थे, तो एक दिन एक शिकारी आया, जाल डाला और बटेरों को पकड़ के ले गया, बेच दिया बाजार में और बहुत सारे पैसे कमाए। तो जो बाकी बचे हुए बटेर थे उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे हमारे साथी मारे गए, तो उन्होंने आपस में एक दो को सिखाना शुरू कर दिया कि देखो अगली बार जब शिकारी आए ना तो तुम लोग उसके जाल में फंसना नहीं, और मान लीजिए फंस भी जाओ तो जो जाल की गांठ होती है ना वहां अपना सिर रख करके इकट्ठे जोर लगाना और जाल समेत उड़ जाना, और फिर जाल को एक कांटों वाली झाड़ी पे डाल देना। जब कांटों वाली झाड़ी पे जाल को डालोगे ना तो जाल में झाड़ी के कांटे उलझ जाएंगे, तुम लोग तो उड़ जाना, और शिकारी अपने जाल को कांटों में से निकालते निकालते परेशान हो जाएगा और आगे से जाल बिछाना ही छोड़ देगा। तो पक्षियों ने कहा ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। तो शिकारी आया, उसने जाल डाला और ये बटेर जाल समेत उड़े, जाल को झाड़ी पे डाला, खुद तो निकल आए और शिकारी परेशान हो गया। तो शिकारी ने सोचा कि इन बटेरों में अभी तो एकता है, लेकिन ये एकता हमेशा नहीं रहेगी, कभी ना कभी इनमें फूट पड़ेगी, तब ये मेरे हाथ में आएंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सारे दाना चुग रहे थे, तो दाना चुगते चुगते एक बटेर दूसरे की गर्दन पर से लांग गया। तो जिसके गर्दन पर से लांग गया वो चिल्लाया, कौन है कौन है? तो जो लांगा था उसने माफी भी मांग ली, लेकिन फिर भी वो चिल्लाता रहा, तुमको दिखता नहीं है, तुम अपने को ज्यादा ऊंचा समझते हो, तुम मेरी गर्दन पर से लांग के क्यों गए? और जब ऐसे वो चिल्लाने लगा तो कुछ लोग उसकी तरफ हो गए, कुछ बटेर दूसरी तरफ हो गए, दो गुट बन गए। अब जो समझदार बटेर थे वो वहां से उड़ के दूसरी जगह दाना चुगने लगे और ये एक तरफ दाना चुगते रहे। अब शिकारी ने देखा इनके दो गुट हो गए, अब मौका है, उसने जाल डाला। जब शिकारी ने जाल डाला तब भी वो बहस कर रहे थे, तू जोर लगा तू जोर लगा, तू बड़ा अकड़ के चल रहा था, तब तो तू दौड़ रहा था, अब तेरी ताकत कहाँ चली गई, तू लगा ना, वो तू 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 करते रहे। और इतनी देर में शिकारी आया और उनको जाल समेत बांध करके ले गया। तो कहती हैं कि जब एकता थी तो पक्षियों ने मनुष्य को हराया, और जब एकता टूटी तो एक मनुष्य ने इतने सारे पक्षियों को हरा दिया। तो वास्तव में ताकत किसमें है? एकता में। लेकिन एकता के लिए कुछ सूत्र हैं, कुछ गुण हैं, कुछ धारणाएं हैं। अब सबसे पहली धारणा तो ये है कि नम्रता होनी चाहिए, और दूसरी धारणा ये है कि एक दो के गुण दर्शन होने चाहिए, जहां नम्रता होगी और जहां हम एक दूसरे के गुण देखेंगे वहां एकता रहेगी। इसलिए संस्कृत में एक कहावत है, बालाद अपि सुभाषितम्, अर्थात छोटे बच्चे से भी अच्छी बातें सीख लेनी चाहिए। ये मत सोचो कि इसकी आयु छोटी है, इसको क्या आता होगा। कई बार छोटी आयु का बालक भी बहुत काम की बात कह देता है और वो बात हमारे जीवन को बदल देती है। और दूसरा कहते हैं अमेध्यातपि कांचनम्, अर्थात सोना अगर कूड़े के ढेर पर भी पड़ा हो तो भी उठा लेना चाहिए। अष्टावक्र, बहुत छोटा बच्चा ही तो था जब उसने राजा जनक के दरबार में कहा था कि महाराज ये जो सभा में बैठे हैं ये विद्वान हैं या कौन है, मुझे तो ये विद्वान नजर नहीं आते, जो चमड़ी को देख रही हैं, मेरे बांके टेढ़े शरीर को देख के जो हंस रही हैं। तो उसकी छोटी सी बात ने राजा जनक के जीवन को बदल दिया, राजा ने उसे अपना गुरु बना लिया। इतिहास की एक और बात सुनाती हैं कि एक बार एक राजा ने एक राज परिवार को बंदी बनाया, उसमें चार लोग थे, राजा रानी एक राजकुमार एक राजकुमारी। तो राजा ने एक दिन उनको बंदी गृह से निकलवा के दरबार में बुलाया और अपनी तलवार लेकर के उनकी तरफ चल पड़े और कहा कि मैं अब इन चारों की गर्दन उड़ा दूंगा, इतने दिन तो मैंने बंदी बना के रखा लेकिन अब मैं इनकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो जो राजकुमारी थी उसकी आयु काफी छोटी थी, बाकी तो बड़े थे। जब राजा को तलवार लेके आते देखा तो वो मुस्कुराने लगी। तो राजा को आश्चर्य हुआ, ये छोटी सी डरती नहीं है, छोटा तो सबसे पहले डरता है, तलवार देख के रोता है और ये मुस्कुरा रही है। तो राजा के मन में आया पहले पूछ तो लूं मुस्कुराने का कारण क्या है। तो पूछा कि राजकुमारी तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तो राजकुमारी ने कहा आप काम ही कर रहे हो मुस्कुराने का। आपने कहा ना कि मैं अभी गर्दन उड़ा दूंगा तो इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो राजा ने कहा इसमें हंसने की क्या बात है। तो वो कहती है कि आप तो राजा हो, गर्दन उड़ाने का काम तो एक जल्लाद करता है, आपने राजा हो के बस यही सीखा और कुछ नहीं आता क्या आपको। तो राजा को बड़ी ग्लानी हुई और राजा पीछे हट गया और राजा ने कहा कि जिस राजा की बच्ची इतनी बहादुर है तो उसको मारना नहीं लेकिन उसको तो जीव दान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहादुर लोग संसार में कुछ ना कुछ अच्छा काम अवश्य करेंगे। तो छोटे बच्चे की भी अच्छी बात सुन लेनी चाहिए, गुण कहीं भी हो, अच्छाई कहीं भी हो, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। संगठन के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कोई महत्वपूर्ण है। जैसे एक मशीनरी है, उसमें भले छोटा सा पुर्जा ही है, एक छोटी सी कील ही है, लेकिन कई बार उस छोटी कील के कारण पूरी मशीनरी खड़ी हो जाती है। इसलिए रहीमदास जी ने एक बहुत सुंदर दोहा कहा है कि रहीमन देख बड़ेन को छोटेन दिए बिडारी, जहां काम आवे सुई का करे तरवारी। अर्थात बड़े को देख करके छोटे को इग्नोर मत करो, जहां सुई का काम है वहां तलवार क्या करेगी। तो जहां छोटे से पुर्जे का काम है वहां बहुत बड़ा लोहे का पार्ट क्या काम करेगा। इसलिए इस संगठन में बाबा का माला का पहला बच्चा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना माला का आखिरी बच्चा। बाबा के तो दोनों ही बच्चे। और बाबा ने एक मुरली में कहा था बाबा को अपने माला के आखिरी दाने से भी बहुत प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि बाबा बाबा तो कहता है ना, तो बाबा बाबा कहना भी बहुत बड़ा गुण है। इसलिए इस ब्राह्मण परिवार की माला का हर दाना इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात है, हर एक जिम्मेवार है। कई बार कोई ये सोच ले कि ये जो ब्राह्मण परिवार है ये तो बहुत बड़ा है और इसमें बहुत बड़े बड़े भाई बहने हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन मैं तो ना तो कोई सेवा करता और ना मेरे में कोई ज्यादा ज्ञान, तो ज्यादा जिम्मेवारी तो बड़ों पर है, मेरे पर क्या जिम्मेवारी है। लेकिन नहीं, जब हम ब्राह्मण परिवार में आ गए तो बाबा को प्रत्यक्ष करने की जिम्मेवारी, भारत को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी हम सबके ऊपर है। हम सबको मिलकर के उंगली लगानी है। जैसे यादगार में दिखाते हैं गोवर्धन पर्वत उठाने में हरेक गोप और गोपी ने उंगली लगाई। ऐसे तो भगवान अकेले भी उठा सकते थे, लेकिन गोप गोपियों की उंगली इसलिए लगवाई ताकि उनका भाग्य बने। वो उंगली नहीं लगाएंगे तो भाग्य कैसे बनेगा। इसलिए हरेक ने यथाशक्ति उंगली लगाई और सबने मिलकर के वो गोवर्धन पर्वत उठाया। गोवर्धन अर्थात जिससे गवों की वृद्धि हुई, गवों का वर्धन करने वाला पर्वत। तो ये भारत वास्तव में गोवर्धन बन जाएगा सतयुग में, जहाँ घी दूध की नदियां बहेंगी, बहुत गवें होंगी। तो बाबा कहती हैं हर कोई जिम्मेवार है। एक व्यक्ति माला बेचने के लिए बाजार में जाता है और माला में 100 मणके, तो जब ग्राहक माला देखने के लिए आता है तो देखता है कि 99 मणके चमक रही हैं और 1 मणके की पॉलिश उतरी हुई है, तो ग्राहक उस माला को खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। अब वो 1 मणका कहता है कि मैं तो कॉर्नर में हूं, लास्ट में हूं, छोटा सा हूं, ये बाकी सारे चमक रहे हैं, मेरे ना चमकने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ग्राहक उसके तर्क को स्वीकार करेगा? वो कहेगा नहीं, सारे मणके चमकेंगे तो माला चमकेगी, नहीं तो एक मणके की चमक कम होगी तो सारी माला की शोभा खत्म हो जाएगी। तो ब्राह्मण बच्चों में भी अगर एक मणके की भी ऊपर की चमक कम होगी तो ब्राह्मणों की पूरी माला की चमक कम हो जाएगी। इसलिए मुझे अपने पूरे प्रकाश में, पूरी रोशनी में चमकना है, अपनी रोशनी कम नहीं होने देनी है। कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां तो आती, हम कहते हैं बाबा ऐसे तो हम बहुत अच्छे हैं, आपको याद करते हैं, सारी धारणाएं करते हैं, लेकिन अमुक परिस्थिति आई तो थोड़ी सी चमक कम हो गई, थोड़ा सा उमंग कम हो गया, थोड़ा सा नशा उतर गया, तो उस उतरे हुए नशे के समय अगर हमको कोई देख ले तो उस समय उसके मन की क्या इम्प्रेशन होगा। उसी समय कोई हमारी फोटो खींच ले तो उस समय का वो प्रभाव सारे ब्राह्मण परिवार का प्रभाव कम कर देगा। इसलिए परिस्थितियां तो आएंगी, क्योंकि हम जहां रह रही हैं, दुनिया ही ऐसी है, बेशक हम सेंटर पे भी रहते हो लेकिन सारी दुनिया की हवा कैसी है, सारी दुनिया का पानी कैसा है, सारी दुनिया के वाइब्रेशन कैसे हैं, तो उन वाइब्रेशंस का असर जहां तहां हम होंगे वहां आएगा ही। तो इसलिए परिस्थिति की शिकायत तो हमको करनी ही नहीं है। बाबा को देखिए, जब अच्छी दुनिया होती है तब नहीं आते हैं, लेकिन आते ही तब है जब दुनिया ऐसी बन जाती है और बिना हाथ के, बिना पांव के, बिना शरीर के, केवल वाणी और संकल्पों के बल से नई दुनिया को रचते हैं। हम तो इस दुनिया में, हमारे पास तो बहुत ताकत है, शरीर की ताकत है, देखने की ताकत है, सुनने की ताकत है, बहुत ताकत है। तो इसलिए जब बाबा ऐसी दुनिया में आके स्वर्ग बना रहा है और हम बाबा के साथी हैं तो परिस्थितियों से क्या डरना। बाबा कहते हैं जो बहादुर बच्चे होते हैं वो परिस्थितियों को चुनौती देते हैं कि तुम आओ, तुम्हारे आने से हमें मजा आता है। जैसे जो होशियार विद्यार्थी होता है वो कहता है परीक्षा आए और मैं परीक्षा दूं और फिर मैं टॉप में जाऊं, तो उसको परीक्षा के आने का चाव चढ़ता है। लेकिन जो कमजोर विद्यार्थी होता है उसको टेंशन होता है। आजकल आप देखो स्कूलों में इसलिए ब्रह्मा कुमारी बहनों को बुलाते हैं कि बच्चे परीक्षा के भय से बहुत भयभीत है, लेकिन जो होशियार बच्चा होता है उसे परीक्षा का कभी भय नहीं लगता। जितनी परीक्षा नजदीक आती है वो उतना ज्यादा नाचता है, खुश होता है। तो ऐसे ही हम भी बाबा के ऐसे होशियार बच्चे बने, परीक्षा को देख करके आनंदित हो, तो परीक्षा देख करके चली जाएगी, वो देखेगी मेरे पे इसका कोई असर ही नहीं है। रामायण में कहती हैं कि व्यक्ति की पहचान परीक्षा के समय होती है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल परखिए चारी। रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब श्री राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण दौड़ा दौड़ा गया और कहता है राम भैया, राम भैया, आपको पता है आपको कैकेयी ने वनवास दे दिया। तो श्री राम मुस्कुराए और लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण भैया पहले ये बता कि तूने माता कैकेयी को कैकेयी कहना कब से शुरू कर दिया। जैसे ही परिस्थिति आई तो लक्ष्मण ने तो धीरज छोड़ दिया, लेकिन श्री राम ने अपने धैर्य को बनाए रखा। वनवास दे दिया तो भी माता है, और वनवास नहीं दिया था तो भी माता है, माता तो माता ही है, माता को माता का सम्मान तो मिलना ही चाहिए। इसलिए उस यादगार ग्रंथ में दिखाते हैं कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। बाबा हम बच्चों को भी पुरुषोत्तम बनाने आए हैं, हम तो हर बात में ही पुरुषोत्तम है। इसलिए हमारा टाइटल ही है 16 क्लास संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की ये निशानी है कि परिस्थिति आएगी तो भी वो मर्यादा को नहीं छोड़ेगा, संयम को नहीं छोड़ेगा, अपनी धारणा को नहीं छोड़ेगा कुछ भी। और दूसरी बात, परिस्थिति के जाने के बाद उसकी चर्चा किसी के आगे नहीं करेगा। रात गई और बात गई। अब जैसे सूर्य है, कई बार जब उदय होता है तो इसके आगे बहुत सारे बादल आ जाते, अपना इसके प्रकाश को ढक लेते, लेकिन जब बादल हट जाते हैं तो उसके बाद थोड़ी चर्चा करता है कि मेरे पर बादल आए थे, ये हुआ था, ये हुआ था, अपना काम करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो जो लोग परिस्थिति के बीच जाने के बाद भी याद करते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ, वो हुआ, ऐसे क्यों हुआ, उसने मुझे बहुत रोका, उसने मेरे रास्ते में बाधा डाली, तो वो तो अभी पीछे ही मुड़ मुड़ के देख रही है आगे कैसे बढ़ेंगे। सूर्य की तरह से आई हुई बादलों को पार करो और फिर अपनी रोशनी देने लग जाओ, फिर अपने फुल प्रकाश से प्रकाशित करो। तो एकता के लिए ये दोनों गुण चाहिए। परिस्थिति में धीरज नहीं खोना है और परिस्थिति के जाने के बाद मुड़ के नहीं देखना है, उसकी चर्चा नहीं करनी है। कदम आगे बढ़ा लिया तो फिर कदम पीछे नहीं करना है, बात को भूल जाना है। कहते हैं रात गई और बात गई। यूनिटी के लिए चौथा गुण है लचीलापन, जिसको कहते हैं एडजस्ट होने की शक्ति। एक चाइनीज कहावत है कि अगर आपको जीवन में सर्वांगीण विकास चाहिए, संपूर्ण सफलता चाहिए, तो अपने व्यक्तित्व को पानी जैसा बना लो। पानी की एक खासियत है कि वो लचीला होता है, जिस बर्तन में डालो वही आकार धारण कर लेता है। वो ये नहीं कहता मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं वहां नहीं रह सकता, मुझे ऐसी अनुकूल स्थिति चाहिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, तो उस व्यक्ति की अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाएंगी जो लचीला नहीं होगा। वो तो गिन गिन के अपॉर्चुनिटी ले रहा है, अपने आए हुए सुअवसरों को छोड़ देगा। सुविधा भोगी है, सुविधा मिलेगी तो काम करेगा, सुविधा नहीं मिलेगी तो सेवा नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिक उसके नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन पानी को आप देखिए, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, रास्ते में चट्टान आ गई तो कभी चट्टान के साथ झगड़ा नहीं करता कि तुम हटो तो मैं बहूं, तुम मेरा रास्ता छोड़ो, तुम मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो गई, कभी नहीं बोलता चट्टान को। अगर चट्टान में थोड़ी भी जगह है, कोई थोड़ी भी कहीं से वो टूटी हुई है, तो वही थोड़ी सी जगह में से ही निकलेगा, और नहीं तो क्या करेगा, पानी दो हिस्सों में बटेगा, आधा चट्टान के इधर से निकलेगा, आधा इधर से निकलेगा, आगे जा करके फिर एक हो जाएगा, लचीला है ना वो। और अगर चट्टान के छोटे टुकड़े हैं तो उनको अपने साथ बहा ले जाएगा, और बहाते बहाते भी उन पे परोपकार करेगा, उनको सिखाता है कि तुम्हारे ये जो कोने हैं ना, ये बहुत चुभते हैं, तुम चुभना छोड़ो, और उनके वो कोने घिसा देगा, मेरी तरह से परोपकारी बनो। और कोने घिसाते घिसाते उन्हें शालिग्राम बना देता है, फिर लोग उन टेढ़े बाके कोने वालों को भी शालिग्राम के रूप में पूजते हैं। तो पानी अपकारी पर भी उपकार करता है, जो रास्ते में बाधक थे उनको भी पूजनीय बना देता है। दुनिया में तो लोग कहते हैं जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और पानी कहता है जो मुझसे टकराएगा वो पूजनीय बन जाएगा। तो लचीलापन चाहिए। एक बार एक राजा था, उसने बहुत सारे किले जीते। अब किले तो जीत लिए और बहुत सारे राजाओं को अधीन कर लिया, लेकिन अब उसके सामने सवाल ये है कि इतने सारे राजाओं को मैं एकता में कैसे रखूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये आपस में एक हो जाएं और मेरे ही विरोध में चले जाएं। तो ये मेरे अंडर भी रहें और मेरे साथ यूनिटी में भी रहें, तो इसका कोई ना कोई मंत्र मैं अपने गुरु से लेके आता हूं। तो अपने गुरु जी के पास गया, उसने देखा कि गुरुजी धूप में बैठे हैं और यज्ञ के लिए बड़ी लकड़ी में से छोटे छोटे टुकड़े काट करके तोड़ के नीचे रख रही हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी लकड़ियां जैसे माचिस की तिल्ली होती हैं, ऐसी बिखरी पड़ी थी और वो तोड़ते ही जा रहे थे। तो उन्होंने जाके नमस्कार किया और पूछा कि मैं सारे राजाओं को अपने साथ एकता में कैसे चलाऊं। तो महाराज अपने ध्यान में मगन थे, उन्होंने कहा मेरी धूप रोक के खड़ा मत हो, साइड में खड़ा हो जा। मुझे मेरा काम करने दे। तो राजा एक तरफ खड़े हो गए, देखते रहे, वो तोड़ते रहे लकड़ी। जब टूट गई सारी लकड़ी तो उन्होंने उनको हाथ में लिया और पहले मुट्ठी में उनका एक गठा सा बनाया और पास में एक तार पड़ी थी लोहे की पतली, उससे उस पूरे गठे को बांध दिया। तो राजा ने सोचा अब गुरुजी का काम पूरा हो गया, अब मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो राजा ने कहा महाराज बताइए ना मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने कहा बता तो दिया। तो राजा ने कहा महाराज मैंने तो नहीं सुना। तो गुरुजी ने कहा कुछ बातें वाणी से बताई जाती हैं और कुछ बातें कर्म करके दिखाई जाती हैं, ज्यादा प्रभावशाली कौन सी। तो राजा ने कहा जो कर्म करके दिखाई जाती हैं वो ज्यादा प्रभावशाली होती। तो गुरुजी ने कहा मैंने वही तरीका अपनाया ताकि तुम जल्दी समझ जाओ, मैंने करके दिखाया। तो राजा फिर भी नहीं समझा। तो गुरुजी ने कहा देख मेरे हाथ में कितनी लकड़ियां हैं, ये सारे तेरे राजा हैं और इनको मैंने कैसे एक बना दिया, इनके चारों तरफ तार को लपेटा तो ये सारे एक हो गए बिखरे हुए, लेकिन इसके लिए तार में कौन सी योग्यता है, तार में लचीलापन है, ये तार इसको मैंने जैसे चाहा मोड़ा वैसे ये मुड़ गया, और अगर ये अकड़ा होता तो क्या ये सारी लकड़ियों को बांध सकता था, नहीं। तो कहा राजन तुम लचीले हो जाओ, तुम नम्र हो जाओ, तुम परिस्थितियों के अनुसार ढलना सीखो, झुकना सीखो, मुड़ना सीखो। कहते हैं जो ढल जाए वो सोना और जो अकड़ जाए वो लोहा, जो मोल्ड होता है वो रियल गोल्ड होता है। तो राजन तुम मोल्ड होना सीखो और जब तुम मोल्ड हो जाओगे तो इन सारे राजाओं को अपने अनुसार चला सकोगे, यूनिटी में रख सकोगे। तो एकता के लिए और भी बहुत सारे गुण हैं। एकता का जो दृश्य दिखाते हैं, एक चित्र दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि सब लोग हाथ में हाथ पकड़े खड़े हैं, एक चेन बनी हुई है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हाथ कब पकड़ेगा, जब हाथ स्वच्छ होगा। अगर हाथ स्वच्छ ना हो तो व्यक्ति हाथ पकड़ने में संकोच करता है। तो वास्तव में ये हाथ की बात नहीं है, ये बुद्धि की बात है, ये मन की बात है। एक मन से दूसरे मन का मिलान कब होता है, जब मन स्वच्छ हो। जब मन के अंदर किसी भी प्रकार की अस्वच्छता ना हो, छोटा विकार या बड़ा विकार, किसी भी प्रकार का विकार होगा, मन अस्वच्छ होगा, तो मन की मन से दूरी बन जाएगी, दिल की दिल से दूरी बन जाएगी। जब हम किसी को अपने दिल के नजदीक लाते हैं तो ये जो बाहें हैं ना मनुष्य की, ये भी बहुत लचीली हैं, पीछे भी जाती हैं आगे भी जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बाहों में लेके ना उस व्यक्ति को अपने हृदय से लगा लेते हैं, भई ये मेरे बहुत करीब है। तो वास्तव में मनुष्य का मन इतना लचीला होना चाहिए, विचार इतने लचीले होने चाहिए कि वो किसी को भी अपना ले और अपना के उसे अपने दिल के करीब ले आए। और यूनिटी के लिए एक और अन्य गुण चाहिए, उसका नाम है पारदर्शिता। भीतर और बाहर जब व्यक्ति एक जैसा होता है तो उस पे लोगों को विश्वास होता है और उसके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर पारदर्शिता ना हो, दुराव है, छिपाव है, भटकाव है, किसी से लगाव है, कहीं से उठाव है, तो इन अवगुणों के कारण भी दिल के दिल से दूरी हो जाती है। जैसे आधुनिक युग में हम देखते हैं, पहले एक कहावत होती थी लव ह्यूमन बींग्स एंड यूज थिंग्स, आज ये पलट गया, आज हो गया है यूज ह्यूमन बींग्स एंड लव थिंग्स। मनुष्य का प्रयोग करता है और उसको इग्नोर कर देता है और चीजों को संग्रह करता जाता है, संग्रह करता जाता है। तो जब हम चीजों से प्यार करेंगे तो लोग हमारे नजदीक क्यों आएंगे? होना ये चाहिए कि चीजें उतनी हों जितनी की जरूरत है, फिर उनसे डिटैच हो जाओ। और मनुष्यों के साथ दिल का स्नेह हो तो मनुष्य हमारे नजदीक आएंगे। इसलिए जहाँ संग्रह प्रवृत्ति होती है वहां भी यूनिटी नहीं बनती है, और जहाँ त्याग वृत्ति है, देने की भावना है, वहाँ यूनिटी होती है। महात्मा गांधी के जीवन में दिखाते हैं कि वो कभी भी कोई भी चीज अपने पास नहीं रखते थे, चीजों से वस्तुओं से उनका लगाव नहीं था। और सार्वजनिक जीवन में उन्हें जो चंदा मिलता था उनमें से वो एक रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होने देते थे। एक बार एक सभा थी जिसमें बहुत भीड़ थी और उनके प्रवचन के बाद लोगों ने उन्हें दिया, लोग देते ही थे उन्हें, देश सेवा के लिए धन देते थे, तो उस धन में से एक रुपया नीचे गिर गया। तो उस भीड़ में जहाँ इतने लोग थे, महात्मा गांधी उस एक रुपये को ढूंढने के लिए झुके, तो लोगों ने कहा बापू एक ही रुपया तो है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, सार्वजनिक पैसा एक रुपया भी बड़ा अमूल्य है, जिसने दिया है उसकी ये बहुत बड़ी भेंट है। जब तक वो एक रुपया नहीं मिलेगा तब तक बापू अगला कोई कार्य नहीं करेगा। तो इतना वो एक एक रुपये को महत्व देता था। और हमारी दादियों के जीवन में भी हमने देखा है, बड़ी बड़ी दादियां यज्ञ की 108 की माला में आने वाली, 8 की माला में आने वाली भोजन बनाती थी, सब्जी काटती थी, मटर का एक दाना भी इधर उधर हो जाता तो कहती थी नहीं बाबा का एक मटर का दाना भी मोहर के बराबर है, इसको भी उठाओ। गेहूं साफ करते अगर गेहूं का एक दाना भी इधर उधर हो जाता था तो कहते थे नहीं ये भी मोहर के बराबर है। तो चीजों की संभाल तो हम पूरी करें लेकिन चीजों में आसक्ति ना रखें। और व्यक्तियों के साथ भी हम स्नेह और सम्मान तो रखें लेकिन व्यक्तियों से लगाव ना रखें तो हमारा जीवन सबके साथ घुलमिल के रहेगा। क्योंकि एडजस्ट होने की शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। और लास्ट में एक बात सुना के अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक बार एक परिवार में एक नई बहू आई तो सास ने उसको भोजन बनाने की ड्यूटी दी। अब पहले दिन ही वो किचन में घुसी तो डर रही थी, नया घर, नई रसोई, नए लोग, और कहते हैं जो डरेगा सो मरेगा। तो डरते डरते बना रही थी तो बेचारी का हाथ कांप गया और नमक ज्यादा गिर गया। तो भोजन बनाने के बाद वो माता जी आई, बूढ़ी माता, उसने कहा बेटा मैं चखे तो देखूं। और भोजन जब चखा तो सब्जी में भी नमक बहुत, दाल में भी नमक बहुत, उसको समझ में आ गई कि दोनों ही चीजें बहुत कड़वी हो गई है। उसने प्यार से बहू को कहा कि तुम सुबह से सेवा कर रही हो, तुम आराम करो, भोजन सबको मैं खिलाऊंगी। तो बहू तो कमरे में चली गई और घर का बड़ा व्यक्ति भोजन करने आया सबसे पहले। उसने भोजन परोसा, उसने सब्जी के साथ रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला और कहा अरे सब्जी तो जहर है, किसने बनाई? तो कहा मैंने ही बनाई, मैं ही तो बनाती हूँ, और कौन बनाएगा? आज मेरा हाथ हिल गया था, नमक ज्यादा गिर गया, तुम मलाई के साथ खाना खा लो। तो उसको भेज दिया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी वही कहा दाल भी जहर, सब्जी भी जहर, किसने बनाई? बोला मैंने ही तो बनाई, तुम अचार के साथ खा लो, तुम तो वैसे ही अचार को बहुत पसंद करते हो, रोज कहते हो। तो उसको अचार के साथ खिला के भेज दिया। बहू अंदर सब कुछ सुन रही थी तो उसको बड़ी खुशी हुई कि ये तो बड़ी अच्छी है, इसने सबके सामने मेरा मान सम्मान रख लिया, नहीं तो पहले दिन ही लोग मेरे बारे में क्या सोचते। तो इस बात से हमको ये सीखना है कि हम चाहे पिता पुत्र इकट्ठे रहते हों, चाहे भाई बहन इकट्ठे रहते हों, चाहे दो बहनें सेंटर पे इकट्ठी रहती हों, या और भी किसी रिश्ते में हम जहां भी इकट्ठे रहते हैं, तो अगर किसी से गलती हो जाए तो उसको उड़ाए नहीं। कहते हैं सेंट को तो उड़ाया जाता है और कूड़े को डब्बे में डाल के ढक्कन बंद किया जाता है। बुरी चीज को कभी भी उड़ाना नहीं चाहिए, किसी की कमी को, अवगुण को, और अच्छी चीज को सेंट की तरह से सब जगह फैलाना चाहिए। जब ये दो बातें हमारे में आएंगी तो हम अनेकों के बीच में भी एक होके रह सकेंगे। ओम शांति। दो मिनट बाबा की याद में बैठ के फिर उठे।
मेहरबानियां प्यार में भीगे अफसाने कहती।